सहज और नाथ सिद्ध। हमने देखा है कि इस काल में वेद को अंतिम और अविसंवादी प्रमाण मानने का आग्रह बहुत अधिक था, परंतु इस काल की यही एकमात्र प्रवृत्ति नहीं थी, एक दूसरा स्वर वेद विरोधी भी था। छठी सातवीं शताब्दी के बाद यह वेद विरोधी स्वर अधिक स्पष्ट होकर प्रकट होता है। बौद्धों और जैनों में भी वेद विरोधी स्वर पाया जाता है और वह काफी पुराना है, परंतु यह नया स्वर कुछ भिन्न श्रेणी का है। इनमें सर्व व्यापक सर्व शक्तिमान प्रभु सत्ता को अस्वीकार नहीं किया गया है। कभी कभी तो इसमें अद्वैतवाद का स्वर बहुत स्पष्ट होकर प्रकट हुआ है। ज्यों ज्यों शताब्दियां बीतती गई हैं, त्यों त्यों इस विरोध का स्वर केवल दृढ़ ही नहीं कठोर भी होता गया है। क्या यह आर्यत्य जातियों की देन है? क्या यह उन जातियों की मनीषियों की प्रतिक्रिया थी जो अब तक आर्य भाषा के माध्यम से नहीं कह सके थे? वाम मार्गी तांत्रिक और योगी तो उल्टी और धक्का मार भाषा में कहने के अभ्यस्त हो गए थे। विरोधाभास यह है कि कहने से उनकी प्रतिष्ठा घटी नहीं, ये लोग अधिकाधिक उत्साह के साथ सीधी बात को भी उलट के जटिल और गुठीली बनाकर और आक्रामक तथा धक्का मार बनाकर कहते गए। कहने का ढंग कुछ विचित्र सा था। गोमांस भक्षण पाप है, यह सर्वविदित बात है। वारुणी पीना बुरी बात है, यह सभी जानते हैं। लेकिन हठ योगी यही कहेगा कि नित्य गोमांस भक्षण करना चाहिए और वारुणी का पान करना चाहिए, क्योंकि यही विष्णु का परम पद है और यही कुलीन का परम कर्तव्य। यह भाषा स्पष्ट ही आक्रामक और धक्का मार है। इसका उद्देश्य शायद चढ़ाना ही है, क्योंकि दूसरे ही श्लोक में स्पष्ट व्याख्या कर दी गई है कि गो जिह्वा का नाम है और उसे उलट कर ब्रह्म रंध्र में ले जाना ही गोमांस भक्षण है। तालू के नीचे जो चंद्र स्थान है उससे सोमरस नामक अमृत झरा करती है, वह तो अमर वारुणी है, उसे पाना बड़े पुण्य का फल है। दूसरी बात कहने के लिए पहले वाले श्लोक की भाषा एकदम आवश्यक नहीं थी। जिह्वा को तातु में उलटने को गोमांस भक्षण कहना बिल्कुल अनावश्यक था। फिर भी ऐसी भाषा का प्रयोग किसी न किसी उद्देश्य को सामने रखकर ही किया गया होगा। निर्दोष बातों की ऐसी भाषा में कहना जिससे वैदिक आचार में विश्वास रखने वाले व्यक्ति के चित्त में धक्का लगे, केवल यही सूचित कर सकता है कि इस प्रकार की बात कहने वालों के मन में वैदिक आचार्य के प्रति श्रद्धा नहीं थी। तांत्रिक और हठ योगियों के साहित्य से इस प्रकार की बहुत सामग्री संग्रह की जा सकती है। कृष्णाचार्य ने जब कहा था एक कुन किंजे मतम न तंत डी धरणी किले केली करंत, अर्थात मंत्र तंत्र सब बेकार है, केवल गृहिणी के साथ केली करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है, तो वास्तव में वे यह कहना चाहते थे कि महामुद्रा के साधना से ही सिद्धि प्राप्त होती है। यद्यपि उन्होंने जब तब सबकी व्यर्थता बतलाई है, परंतु इसके लिए इस भाषा की आवश्यकता नहीं थी। इस बात को आसानी से सहज सरल भाषा में कहा जा सकता था। योगियों सहजयानियों और तांत्रिकों के ग्रंथों से ऐसे उलटवासियों का संग्रह किया जाए तो एक विराट कोठा तैयार हो सकता है, परंतु हमें अधिक संग्रह करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकरण में जो प्रसंग उत्थापित किया जा रहा है वह हमारे काम के लिए पर्याप्त है। सहजयानियों में इस प्रकार की उल्टी बानियों का नाम संध्या भाषा प्रचलित था। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के मत से संध्या भाषा से मतलब ऐसी भाषा से है जिसका अंश समझ में आए और कुछ अस्पष्ट लगे, पर ज्ञान के दीपक से जिसका सब स्पष्ट हो जाए। इस व्याख्या में संध्या शब्द का अर्थ साझ मान लिया गया है और यह भाषा अंधकार और प्रकाश के बीच की संध्या की भांति ही कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट बताई गई है। किंतु ऐसे बहुत से विद्वान हैं जो उक्त भाषा का यह अर्थ स्वीकार नहीं करना चाहते। एक पंडित ने अनुमान भिड़ाया है कि इस शब्द का अर्थ संधि देश की भाषा है। संधि देश भी इस पंडित के अनुमान के अनुसार वह प्रदेश है जहाँ बिहार की पूर्वी सीमा और बंगाल की पश्चिमी सीमा मिलती है। यह अनुमान स्पष्ट ही निराधार है, क्योंकि इसमें मान लिया गया है कि बंगाल और बिहार के आधुनिक विभाग सदा से इसी भांति चले आ रहे हैं। महामहोपाध्याय विधुशेखर भट्टाचार्य का मत है कि यह शब्द मूलतः संध्या भाषा है, संध्या भाषा नहीं, अर्थ अभिसंधि सहित या अभिप्राय युक्त भाषा है। आप संध्या शब्द को संस्कृत संध्याय अभिप्रेत्य का अपभ्रष्ट रूप मानते हैं। बौद्ध शास्त्र के किसी किसी वचन ने सहज ज्ञान और वज्र ज्ञान में यह रूप धारण किया है। असल में जैसा कि भट्टाचार्य महाशय ने सिद्ध कर दिया है कि वेदों और उपनिषदों में से भी ऐसे उदाहरण खोज निकाले जा सकते हैं जिनमें संध्या भाषा जैसे भाषा का प्रयोग मिल जाते हैं, परंतु बौद्ध धर्म की अंतिम यात्रा के समय यह शब्द और यह शैली अत्यधिक प्रचलित हो गई थी और साधारण जनता पर इसका प्रभाव भी बहुत अधिक था। लेकिन अंत तक यह विरोध कुछ कार्यकर नहीं हुआ। राजनीतिक और अर्थनीतिक कारणों ने मूल समस्या को धर दबोचा। ब्राह्मण मत प्रबल होता गया और इस्लाम के आने के बाद सारा देश जब दो प्रधान प्रतिस्पर्धी धार्मिक दलों के रूप में विभक्त हो गया, तो किनारों पर पड़े हुए अनेक संप्रदायों को दोनों में से किसी एक को चुन लेना पड़ा। अधिकांश लोग ब्राह्मण और वेद प्रधान हिंदू समाज में शामिल होने का प्रयत्न करने लगे। कुछ संप्रदाय मुसलमान भी हो गए। 10वीं-11वीं सदी के बाद क्रमशः वेद वाह्य संप्रदायों की यह प्रवृत्ति बढ़ती गई कि अपने को वेदानुयायी सिद्ध किया जाए। शैवों ने भी ऐसा ही किया और शाक्तों ने भी, परंतु कुछ मार्ग इतने वेद विरोधी थे कि उनका सामंजस्य किसी प्रकार इन मतों से नहीं हो सका। वे धीरे धीरे मुसलमान होते रहे। गोरक्षनाथ ने योग मार्ग में से ऐसे अनेक मतों का संगठन किया है। हमने ऊपर देखा है कि गुरु गुरु भाई और गुरु सतीर्थ कहे जाने वाले लोगों का मत भी उनका संप्रदाय माना जाने लगा। जालंधर नाथ, मच्छेंद्र नाथ और कृष्णपाद के प्राप्य ग्रंथों से उद्धरण देकर सिद्ध किया जा सकता है कि ये लोग वेदों की परवाह करने वाले नहीं थे। इन सबके शिष्य और अनुयायी भारतीय धर्म साधना के इस उथल पुथल के युग में गोरक्षनाथ के नेतृत्व में संगठित हुए, परंतु जिनके आचरण और विचार इतने अधिक विभ्रष्ट थे कि वे किसी प्रकार के योग मार्ग का अंग बन ही नहीं सके, उन्हें उन्होंने स्वीकार नहीं किया। शिव जी के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय उनके द्वारा स्वीकृत हुए। वे निश्चय ही बहुत पुराने थे। एक सरसरी निगाह से देखने पर स्पष्ट हो जाएगा कि आज भी उन्हीं संप्रदायों में मुसलमान योगी अधिक हैं, जो शिव द्वारा प्रवर्तित और बाद में गोरक्षनाथ द्वारा स्वीकृत थे। कहने का तात्पर्य यह है कि गोरक्षनाथ के पूर्व ऐसे बहुत से शैव, बौद्ध और शाक्त संप्रदाय थे जो वेद बाह्य होने के कारण न हिंदू थे और न मुसलमान। जब मुसलमानी धर्म प्रथम बार इस देश में परिचित हुआ तो नाना कारणों से दो प्रतिद्वंदी धर्म साधना मूलक दलों में यह देश विभक्त हो गया, जो शैव मार्ग और वेदानुयायी मार्ग शाक्त मार्ग थे। वे बृहत्तर ब्राह्मण प्रधान हिंदू समाज में मिल गए और निरंतर अपने को कट्टर वेदानुयायी सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहे। गोरक्षनाथ ने उनको दो प्रधान दलों में पाया होगा। प्रथम, एक तो वे जो योग मार्ग के अनुयायी थे परंतु शैव या शाक्त नहीं थे। दूसरे, वे जो शिव या शक्ति के उपासक थे, शैवागमों के अनुयायी थे परंतु गोरक्ष मत योग मार्ग के उतने नजदीक नहीं थे। इनमें से जो लोग गोरक्ष मत मार्ग के निकट थे, उन्हें उन्होंने योग मार्ग में स्वीकार कर लिया, बाकी को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार दोनों ही प्रकार के मार्गों से ऐसे बहुत से संप्रदाय आ गए जो गोरक्षनाथ के पूर्ववर्ती थे, परंतु बाद में उन्हें गोरक्षनाथी माना जाने लगा। धीरे धीरे जब परंपराएं लुप्त हो गईं, तो उन पुराने संप्रदायों के मूल प्रवर्तकों को भी गोरक्षनाथ का शिष्य समझा जाने लगा। इस अनुमान को स्वीकार कर लेने पर वह व्यर्थ का विवाद समूचा स्वयमेव परास्त हो जाता है, जो गोरक्षनाथ के काल निर्णय के प्रसंग में पंडितों ने रचा है। तथा कथित शिष्यों के काल के अनुसार वह कभी 8वीं शताब्दी के सिद्ध होते हैं, तो कभी 10वीं के, कभी 11वीं के और कभी कभी तो पहली दूसरी शताब्दी के भी। ऊपर का मत केवल अनुमान पर ही आश्रित नहीं है, कभी कभी एकाध प्रमाण परंपराओं के भीतर से निकल भी आते हैं। गोरक्षनाथ और शिव द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय की परंपरा स्वयमेव एक प्रमाण है, नहीं तो यह समझ में नहीं आता कि क्यों कोई महागुरु अपने जीवित काल में ही अनेक संप्रदाय का संगठन करता है या करेगा। संप्रदाय मतभेद पर आधारित होते हैं और गुरु की अनुपस्थिति में ही मतभेद उपस्थित होते हैं। गुरु के जीवित काल में होते भी हैं तो गुरु उन्हें दूर कर देते हैं, परंतु प्रमाण और भी हैं। योग संप्रदाय विस्तृति में लिखा गया है कि धवलगिरी के लगभग 80 से 90 कोस की दूरी पर पूर्व दिशा में वर्तमान त्रिशूल गंगा के प्रभव स्थान पर्वत पर वाम मार्गी लोगों का एक दल एकत्र होकर इस विषय पर विचार कर रहा था कि किस हमारे दल का प्रभाव बढ़े। बहुत छानबीन के बाद उन्होंने देखा कि आजकल श्री गोरक्षनाथ का यश चारों ओर फैल रहा है। यदि उनसे प्रार्थना की जाए कि वह हमें अपने मार्ग का अनुयायी स्वीकार कर ले तो हम लोगों का मत लोकमान्य हो जाए। इन्होंने इसी उद्देश्य से उन्हें बुलाया। सब कुछ सुनकर श्री गोरक्ष जी ने कहा, आप यथार्थ रीति से प्रचार कर दें कि अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, अथवा प्रतिष्ठा की उपेक्षा कर अपने अवलंबित मार्ग की वृद्धि करना चाहते हैं। यदि प्रतिष्ठा चाहते हैं तो आप अन्य सब झगड़ों को छोड़कर केवल योग क्रियाओं से ही संबंध जोड़ लें। इसके अतिरिक्त यदि अपने पहले से ही गृहित मत की पुष्टि करना चाहते हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि साधुओं का कार्य जहां गृहस्थ जनों को सन्मार्ग पर चढ़ा देना है, वहां वे उन विचारों को कुत्सित पथ में प्रविष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। वाम मार्गियों ने जिन्हें लेखक ने यहाँ कापाली कहा है, दूसरी बात को ही स्वीकार किया और इसलिए गुरु गोरक्षनाथ ने उसकी प्रार्थना अस्वीकृत कर दी। यह पुराने मत को अपने मार्ग में स्वीकार न करने का प्रमाण है। पुराने मार्ग को स्वीकार करने का उदाहरण भी पाया जा सकता है। प्रसिद्ध है कि गुरु गोरक्षनाथ जब गोरख बंसी आधुनिक कलकत्ते के पास आए तो वहां वे देवी काली से उनकी मुठभेड़ हो गई। काली जी को ही हारना पड़ा। फलस्वरूप उनके समस्त शाक्य शिष्य गोरक्षनाथ के संप्रदाय में शामिल हो गए। तभी तो गोरक्ष मार्ग में काली पूजा प्रचलित है। इन दिनों सारे भारत के गोरखपंथियों में काली पूजा प्रचलित है। यह कथा योगी संप्रदाय विस्तृति में दी हुई है।